वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, इन दिनों हम लुका रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने लुका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन को 22 अध्याय से आरंभ करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे विचारों को और हमारे एकाग्रतापन को खोल दें ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं तो आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, आपके वचन को समझने के लिए आप हम सब की सहायता करें। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी जो बीमार अवस्था में हैं, जो दुखी हैं, जो निराश में हैं, जो अपने जीवन साथी की तलाश में हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं। प्रेम पिता, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें ताकि वे भी आपके इस वचन के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में मसीह का आगमन अति निकट है के विषय में हमने देखा था और इस बीच आपने अपने जीवन पर ध्यान दिया होगा तथा यीशु से भेंट करने की तैयारी भी पूरी कर ली होगी। आज के अध्ययन में हम यीशु द्वारा प्रभु भोज की स्थापना, यहूदा द्वारा विश्वासघात और पत्रस का इनकार देखेंगे तथा यीशु के दुखों पर गौर करेंगे जो वास्तव में हमारी स्थिति को प्रकट करता है। यदि यीशु न होता तो हमें यह पीड़ा एवं कष्ट भोगने पड़ते। आइए देखें, यहूदा ने यीशु को बेचा। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसा कहलाता है निकट था। मित्रों, फसा से 6 माह पूर्व यीशु कैसरिया फिलिपी में था और तब ही से उसका प्रत्येक चरण यरूशलेम की ओर अग्रसर है जहां पर क्रूस उठाएगा। रूपांतरण का पर्वत, यरूशलेम में सार्वजनिक प्रदर्शन आदि इसी योजना का एक भाग है। यह फसा का समय है और बलि का मेमना जो सदा के लिए संसार के पापों को उठाकर साथ ले जाता है वह है यीशु मसीह। हम लुका 22 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। यहां पर ध्यान दे, धर्म गुरुओं का वश चलता तो वे उसे मार चुके होते, परंतु उन्हें जन समूह का भी भय था। फसा के समय संपूर्ण विश्व में यहूदी वहां आते थे, वे सब यीशु के पक्ष में थे, परंतु हम देखेंगे कि वे सिर्फ समर्थक ही थे। हम लुका 22 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। यहां पर आप ध्यान दें, यहां एक प्रश्न उठता है, क्या एक मसीही जन में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकता है? विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश कभी नहीं करेगा, परंतु हाँ, नाम के मसीही जन में दुष्ट आत्मा अवश्य प्रवेश कर सकता है। मेरा सामना कुछ ऐसे मसीही जनों से हुआ है जिन्हें मैं सोचता हूँ कि दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था। मेरे मित्रों, यदि आप सीमांत विश्वासी हैं तो यह जान लीजिए कि आपका मन मसीह से रहित है और खाली स्थान में शैतान का निश्चय ही प्रवेश कर जाना आवश्यक है। लुका 11 उसके 24 से 26 पद में यीशु यही कहता है कि जब दुष्ट आत्मा देखता है कि किसी का मन साफ सुथरा और खाली है तो वह अपने साथियों को लेकर वहां बसने आ जाता है। यहूदा के साथ क्या हुआ था? उसने मसीह को त्याग किया और दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश कर गया। हम लूका 22 उसके 4 से 5 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धर्मगुरु अभी विचार ही कर रहे थे कि यीशु को कैसे घात करें अर्थात पकड़ें, और देखो उसी का अपना एक जन धोखा देने को उनके पास उपस्थित हुआ है। तब हम आगे पढ़ते हैं 22 अध्याय उसके 6 पद में, उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। मित्रों, उनका विचार तो यह था कि जब लोग फंसा मना के लौट जाएं तब उसे धोखे से पकड़ लेंगे और घात करेंगे अर्थात मार डालेंगे। इस प्रकार कोई नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ। यहूदा का विचार था कि अवसर की प्रतीक्षा करें और समय आने पर उन्हें सूचित करें, परंतु जैसा यूहन्ना लिखता है, यीशु ने उसके मुंह में रोटी डालकर उससे कहा, समय आ गया है, जो भी करना है शीघ्र कर। यहूदा उसी समय चला गया। हम आगे देखते हैं यीशु का फसह, हमारे प्रभु भोज की स्थापना। यीशु अपने शिष्यों के साथ फसह तैयार करता है। लूका 22 अध्याय उसके 7 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसा खाओ, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। मित्रों, इससे पहले प्रभु यीशु जब यरूशलेम आया तब संभव है कि उसके इस मित्र ने उसे फसह मनाने का निमंत्रण दिया होगा। कहने का अर्थ यह है कि यीशु ने उस गधी के बच्चे की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। हम लूका 22 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। मित्रों, यह यीशु का इस आगमन में अंतिम भोज था और यहूदा भी वहां उपस्थित था। हम लूका 22 उसके 15 से 18 पद में पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने के पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। मेरे मित्रों, फसह में दाखरस का कटोरा कई बार बढ़ाया जाता था। यीशु पूरा व्यवहार निभाया था। यह कटोरा आनंद का था। एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है, क्या यीशु ने वह कटोरा पिया था? मित्रों, मेरे विचार में तो उसने पिया था, क्योंकि इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। मेरे मित्रों, यही फसह यीशु ने अपने शिष्यों के लिए यादगारी ठहरा दिया, जो आज हम प्रभु भोज के रूप में मनाते हैं। हम लूका 22 उसके 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने वियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु ने दो अति क्षण भंगुर वस्तुओं को अपनी देह और अपने लहू का प्रतीक चुना। पीतल और संगमरमर की अपेक्षा ये ही दो नगण्य वस्तुएं उसकी स्मारक थे, क्योंकि वह हमारे लिए पापी बनाया गया। देखें दूसरा क्रंथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में, वह क्रूसीकरण के समय मनुष्य का सा दिखाई नहीं देता था। यशाया ने इसकी भविष्यवाणी की थी, जिसे हम यशाया 52 उसके 14 पद में पाते हैं, उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। हम यशाया 53 उसके 2 पद में आगे देखते हैं, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मेरे मित्रों, सदियों से फंसा प्रभु और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में था और अब क्रूस के कारण फंसा अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। हम प्रभु की मेज पर आते हैं और अपने मन को खोजते हैं। हम उसकी याद में ऐसा करते हैं, उसके क्रूस के कार्य की याद में प्रभु भोज लेते हैं और उसके पुनः आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस लिखता है, जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें यीशु का विश्वासघाती। लूका 22 अध्याय उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। यूहन्ना लिखता है 13 अध्याय उसके 26 से 30 पद में, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है और उसने यहूदा को दिया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, अर्थात शीघ्र कर। यीशु के यह कहते ही वह चला गया। लूका का विवरण समयानुसार क्रम में नहीं है, वह टीका स्वरूप घटनाएं सुनाता है। हम लूका 22 उसके 22 से 23 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके लिए अर्थात जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछपाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, शिष्यों को विश्वास था कि वह धोखा दे सकता है। यदि वह अपना हाथ हम पर नहीं रखता तो मैं अपने विषय में कह सकता हूं कि मैं उसे धोखा देने से नहीं चूकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह मुझ पर से अपना हाथ नहीं हटाएगा। मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूं। आगे देखते हैं भावी राज्य में शिष्यों का पद। लूका 22 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। आपको विश्वास होगा कि वे ऐसा करेंगे। यीशु के सामने क्रूस की मृत्यु है और वे अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आज के पवित्र जन शिष्यों से बेहतर नहीं है। हम लूका 22 उसके 25 से 27 पद में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि यीशु ने मेरे स्थान पर क्रूस उठा लिया तो उसने क्या किया? वह सबसे छोटा बना, वह सेवक बना। जब पृथ्वी पर था तब वास्तव में मनुष्य को उसकी सेवा करनी थी, परंतु उसने इसके विपरीत काम किया। उसने मनुष्य की सेवा की और अंततः उद्धार की मेज लगा दी तथा हमें आमंत्रित किया कि उसके साथ इस भोज में सहभागी हों। हम लूका 22 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यीशु अपने शिष्यों के साथ थे और वह उन्हें सराह रहा है कि वे उसके कष्टों में उसका साथ देंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं लूका 22 उसके 29 और 30 पद में, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के राज्य में शिष्यों को विशेष स्थान दिया जाएगा। वे नए नियम और पुराने नियम का सेतु होंगे, अर्थात वे बीच में होंगे। वे प्रभु की मेज पर भोजन ही नहीं करेंगे, वरन सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय भी करेंगे। हम इसके लिए सही प्रत्याशी नहीं हैं, क्योंकि समय के अनुसार हम उनके समकालीन नहीं हैं। उद्धार प्राप्त परमेश्वर की संतान भी सम्मान का पद प्राप्त करेंगे। आप इस स्थान की तैयारी में हैं या नहीं, इसका अर्थ यह ना समझें कि हमें उद्धार के लिए कर्म करने हैं। स्वर्ग प्रवेश तो परमेश्वर का अनुग्रह है, परंतु आपके कर्म आपके विश्वास को सिद्ध करेंगे और न्याय के दिन आपको पद प्रदान करेंगे। क्या आप भले कामों में रुचि रखते हैं? आपको भले काम करना चाहिए। मेरे मित्र, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? मेरे विचार में वरन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिए हैं उनका वह निश्चय ही न्याय करेगा। क्या आप जानते हैं कि आरंभिक कलीसिया में क्या वरदान मुख्य था? दोरका नामक एक स्त्री सिलाई का काम करती थी। यह उसका वरदान था। वह गरीब विधवाओं को वस्त्र देती थी, अर्थात उनके लिए वस्त्र सिला करती थी। आपका न्याय आपके वरदानों को निष्ठापूर्वक पूरा करने के विषय होगा। आपका मसीही जीवन परमेश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। लूका 22 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे से आप यह अर्थ ना निकालें कि यीशु उससे मन परिवर्तन के लिए कह रहा है। यीशु के कहने का अर्थ था कि जब उसका विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब वह एक परिवर्तित व्यक्ति होगा और अपने विश्वासी भाइयों के लिए ढाड़स एवं बल देने वाला होगा, अर्थात बल देने का कारण ठहरेगा। प्रभु जानता था कि पतरस उसका इनकार करेगा, परंतु उसने पतरस के लिए प्रार्थना की कि उसका विश्वास जाता ना रहे। मेरे मित्रों, प्रभु आज हमारे लिए प्रार्थना करता है। वह जानता है कि आप कब लड़खड़ाएंगे, कब चूक जाएंगे, कब गलतियां कर बैठेंगे। प्रभु के विश्वासी चूक कर सकते हैं, अर्थात गलतियां कर सकते हैं, परंतु उनका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि मसीह यीशु आपके लिए प्रार्थना करता रहता है। वह कितना ही महान है, अर्थात कैसा महान परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 9 में यूहन्ना ने लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं, परंतु उन्हें के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मेरे मित्र, यहाँ पर ध्यान दे कि यीशु ने संपूर्ण संसार के लिए अपनी जान दी है, न कि आपके लिए और न कि मेरे लिए, परंतु सारे संसार के लिए। इससे अधिक आप उससे नहीं मांग सकते। वह परमेश्वर के जनों के लिए विनती करता रहता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हो सकता है कि आप अपने लिए प्रार्थना न करें, परंतु वह नहीं चूकता, अर्थात वह कभी भी नहीं भूलता। वह आपके लिए सदैव प्रार्थना करता रहता है। हम आगे पाते हैं कि जो व्यक्ति परीक्षाओं में होकर निकला है वही किसी की सहायता कर सकता है। आगे चलकर पतरस कलीसिया का मार्गदर्शक बना। मेरा यह अभ्यास है कि मैं किसी शराब के आदि व्यक्ति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मन फिराए हुए शराबी को ही भेजता हूँ। अपनी युवावस्था में जब मैं प्रचारक के रूप में कार्यरत था तो एक वृद्ध शराबी के मार्गदर्शन का मैं प्रयास कर रहा था, परंतु उसके विचार में मैं उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहा था। अतः मैंने एक पुराने शराबी को जो अब मसीह को ग्रहण कर चुका था उसकी सहायता के लिए भेजा। उसने जाकर उससे बातें करना आरंभ की और कहा, राजू, हम दोनों साथ साथ पिया करते थे, परंतु यीशु ने मेरा उद्धार किया और वह तुम्हारा भी उद्धार करेगा, और यीशु ने निश्चय ही उसका उद्धार किया। राजू का जीवन बदल गया। जिसे किसी परीक्षा का अनुभव हो वही किसी की सहायता कर सकता है, अर्थात जो जिस कष्ट से गुजरा है उस कष्ट की सहायता दूसरों की मदद के लिए कारगर होता है। हम लूका 22 उसके 33 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि पतरस मन से तो निष्ठावान था, परंतु वह अपनी दुर्बलता को नहीं जानता था। हम में से अधिकांश लोग अपनी दुर्बलता को नहीं पहचानते हैं, और यही कारण है कि हम बार बार विश्वास में पीछे हट जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 34 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। पतरस को विश्वास ही नहीं था कि वह प्रभु का इनकार करेगा, परंतु उसी रात उसने प्रभु का इनकार किया और वह भी 3 बार किया। मेरे प्रिय मित्रों, हम भी कई बार प्रभु यीशु को जानबूझकर उसका इनकार करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम अगर पतरस के स्थान पर होते तो शायद ऐसा नहीं करते। लेकिन हम भी प्रतिदिन प्रभु का इनकार करते हैं, कई बार हमें मौका मिलता है कि हम उसकी गवाहियों को दें, लेकिन हम इससे हिचकते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, ऐसा ना हो कि लोग हमें जान जाएं कि मैं एक मसीही व्यक्ति हूं। मेरे मित्रों, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्या पतरस की तरह आप भी प्रतिदिन इनकार कर रहे हैं, या ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे आप उसकी गवाही देने के लिए डरते हैं? मेरे मित्र, प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप भी उसके निकटता में आए, क्योंकि वह आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन आज हम अपने जीवन में निर्णय लें और उस जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में वास करे और हमारे जीवन का संचालन करे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर हमको